জান বল্লভা গিরিবর ধারি অশোদনন্দন ব্রজ জান রঞ্জন যশোদানন্দন ব্রজ জান রঞ্জন যমুনা তীরা বনচারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি জয় প্রভু পাদা জয় প্রভু পাদা প্রভু পাদা শ্রীল প্রভু পাদা পাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ ডিভাইন গ্রেস এসি ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্রী প্রভুপাদ কি অল গ্লোরিস অ্যাসেম্বলড ডিভোটিস অল গ্লোরিস অ্যাসেম্বলড ডিভোটিস গ্লোরিস অ্যাসেম্বলড ডিভোটিস শ্রী গুরু এন গৌরাঙ্গ ঠাকুর সীতা মহারানী রামায়ণ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় আজ বহুত পবিত্র দিন হ্যাঁ আজ ভগবান রাম কি শক্তি শ্রীমতি সীতা দেবী কা আবির্ভাব দিবস হ্যাঁ সাথ মে জানবা দেবী কাজ অপিয়রেন্স ডে আজ প্লস মধু পণ্ডিত গোস্বামী কাজ তো আজ মানে ভক্ত কি প্রসন্নতা কে লিয়ে থা সা রামায়ণ সে সীতারাম কি পবিত্র লীলাওকে বারে পড়না চাহ গুরুদেব শ্রী প্রভুপাদ কি কৃপা চাহত আপ সবকে ভি কৃপা চাহত জিসকে দ্বারা মে আপনে আপ শুদ্ধ বনা সকু আর আপ সব ভি ইসকো সুনকে প্রসন্ন ভি হম আর হৃদয় কি শুদ্ধতা কো ভি প্রাপ্ত করেন ভগবান কৃষ্ণ কি কথা ইয়া ভগবান রাম কি কথা ইয়া ভগবান গৌরঙ্গ কি কথা ইয়ে ভগবান সে অভিন্ন হতি বাহার এক বহুত সুন্দর এক ভক্ত নে লিখা হুয়া রামায়ণ কে বারে মে বতাতে হ্যাঁ কি ইধর ইউ আর প্রভুপাদ কা লেকচার হ্যাঁ প্রভুপাদ কে পুস্তক সে প্রভুপাদ বলতে হ্যাঁ ইয়া তো আপ ভগবান রাম কা নাম লে রহে হো ইয়া ভগবান রাম কি লীলা সুন রহে হো ইসকা মতলব ভগবান কা ডাইরেক্ট সঙ্গ কর রহে হো অভি হম রামায়ণ পড় রহে হ্যাঁ যানি সাক্ষাৎ রাম হ্যাঁ সীতা হ্যাঁ লক্ষ্মণ সব পার্ষদ কে সাথ হ্যাঁ জব গৌরলীলা সুন রহে তো চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ সুন রহে তো কৃষ্ণ ইয়া বিদুর আর মৈত্রে কা সংবাদ সুন রহে তো বিদুর হ্যাঁ মৈত্রে হ্যাঁ শেদ আপকো দিখাই নেই পড়ে চশমা লগা কে ভি নেই দেখতে হো লেকিন শ্রদ্ধা কি আঁখো সে হম কান সে সুননে সে হম ট্রান্সমিটার সাউন্ড ভাইব্রেশন সে উসকা অনুভব কর সকতে हरे कृष्ण। सीता महारानी जो है ये भगवान की शक्ति है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, ये सब एक तत्व है, ये दिव्य तत्व है। जैसे भगवान और भगवान की शक्ति ये हमेशा साथ में रहते हैं, जैसे सूर्य और सूर्य के किरण हमेशा साथ में रहते हैं। शक्ति शक्तिमान अभेद तत्व, ऐसे भगवान और भगवान की शक्ति में कोई अंतर नहीं है। तो राधा और कृष्ण जैसे हैं, जैसे भगवान कृष्ण से सारे अवतार आते हैं, रामादि मूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठान, राम नरसिंह वराह, ये सारे अवतार जो हैं भगवान कृष्ण से ही आ रहे हैं। ऐसे श्रीमती राधा रानी के अलग अलग विस्तारित स्वरूप हैं, जिसमें से एक सीता महारानी है, भगवान की शक्ति है। और विशेष करके सीता महारानी के चरित्र का एक विशेष गुण जो रामायण में पाया जाता है कि कैसे भगवान के प्रति वफादारी, लॉयल्टी, और किसी भी स्थिति में भगवान के राम के चरणों को नहीं त्यागना, ये सीता महारानी अपने उदाहरण से हमें सिखाते हैं। सीता महारानी राधा रानी से अभिन्न है। राधा रानी जो है स्वयं भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप है, परसोनिफिकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, ये सीता महारानी है। और अपने उदाहरण से वे हमें सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में भक्त को अपने स्वामी, अपने प्रभु भगवान के चरणों का त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे आप सब जानते हैं कि रावण अनेक रूप से प्रयास करता है, सीता को प्रलोभन देता है कि आप मुझे स्वीकार करो, ये पूरा लंका राज्य तुम्हारा हो जाएगा, जो मेरे सारी रानियां हैं वो तुम्हारी दासियां बन जाएंगी। और दूसरी ओर उसको धमकी भी देते हैं, अगर तुम ये नहीं स्वीकार करोगे तो तुम्हें बहुत बुरा फल भुगतना पड़ेगा, मेरे राक्षस जो रसोईया है वो आपको मार डालेंगे और आपका भोजन बना देंगे। लेकिन दोनों स्थिति में सीता महारानी बिल्कुल निडर रहते हैं, भगवान राम के चरणों को कभी नहीं भूलते। सीता और राम का विशेष करके ये जो लीला है इस अवतार में, वो विरह प्रेम की महानता को दिखाने के लिए, संभोग और विप्रलम्ब, ये दोनों भगवान के दो तरीके हैं भगवान के साथ प्रेम करने के। लेकिन उसमें विप्रलम्ब सेवा जो है वो ज़्यादा ऊंची है। सीता ये भगवान ने जो रामायण की पूरी लीला है सीता हरण की, और उसके बाद बहुत साल तक भगवान से दूर रहने की, उसका उद्देश्य यही है भगवान के साथ विरह का अनुभव करना। और अंत में जब भगवान रामचंद्र जी सीता को वापस लेकर आ भी जाते हैं रावण को मारने के बाद में, तब एक धोबी के बोलने पर भगवान राम को त्याग देते हैं। और सीता महारानी समझते हैं कि भगवान की यही इच्छा है, अश्ली सेवा पदरतम पिनश्तुमाम आदर्शनान मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधा तो लंपटो मत प्राणनाथस्त सेवना पर। ये जो श्लोक शिक्षाष्टक का है जो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ये बोलते समय चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं श्लोक, या सीता महारानी का भी ये भाव है कि मेरे प्रभु राम की अगर ये इच्छा है कि मैंने उनके लिए इतने कष्ट सहन किए, मैंने उनके लिए इतने तकलीफें सहन किए, उसके बाद भी उनकी ये इच्छा है कि मैं वापस वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में मुझे छोड़ रहे हैं, तो ये भी मुझे स्वीकार है। ये डिवोटी है। डिवोटी का मतलब सरेंडर, समर्पण। समर्पण का मतलब अनकंडीशनल सरेंडर, अहेतुकी अप्रतिहता, ये आत्म का सुप्रसिद्धति, सवय पुंस परो धर्म यथो भक्ति रदोक्षति, अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। शुद्ध भक्ति का मतलब है कि और कोई इंटरेस्ट ही नहीं सिवाय अपने स्वामी को प्रसन्न करने का। एक पतिव्रता स्त्री जैसे होती है, वैसे एक भक्त जो है भगवान के चरणों में पूर्ण से समर्पित है कि भगवान आपको क्या चीज़ प्रिय है। इस श्लोक के परपोर्ट में जो शिक्षाष्टक का जो श्लोक है उसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु स्वयं तात्पर्य देते हैं आगे के दो तीन श्लोकों में। तो बताते हैं कि अगर मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं मेरे को तकलीफ देने में, तो वो तकलीफ ही मेरे लिए सुख है, और अगर सुखमय स्थिति है लेकिन उसमें मेरे स्वामी दुखी होते हैं तो वो मेरे लिए दुख है। तो अपने लॉर्ड, अपने प्रभु का जो प्रसन्नता है वही मेरी प्रसन्नता है। मेरा अपना कुछ अलग से है ही नहीं, मेरा और कुछ रुचि नहीं है अपनी, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। मेरा अस्तित्व सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए है। बस भगवान बोल रहे हैं वैसे मैं नाच रहा हूँ, भगवान मुझे इस स्थिति में रख रहे हैं वैसे स्थिति में मैं रह रहा हूँ। ये कॉन्शियसनेस है जो सीता महारानी से हमें सीखना है। ये चेतना है भक्त की, आदर्श भक्त की, कि किस तरह से मैं भगवान को अधिक से अधिक प्रसन्नता प्रदान कर सकूं। और भक्ति का मतलब ये है संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान हरि को, भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना, उनको प्रसन्न करना। ये जीवन की परफेक्शन, ये जीवन की पूर्णता है। जिस भी स्थिति में रखें, वहाँ पर शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु एक उदाहरण देते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री कैसे पति की सेवा कर रही है। और वो उदाहरण देते हैं कि एक 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 व्यक्ति होता है जिसको लेप्रसी हो गई होती है, कोढ़ बीमारी हो गई होती है, और उनकी उनकी पत्नी जो है उनकी सेवा कर रही होती है स्थिति में भी, और उस पति की इच्छा होती है किसी दूसरे स्त्री के संग करने की। तो ये जो पतिव्रता स्त्री होती है वो उस दूसरे स्त्री की दासी बनने को तैयार हो जाती है जिससे उसके पति को संतुष्टि प्राप्त हो। श्री प्रभुपाद एक कहानी बताते हैं पुरपोट में चैतन्य चरितामृत के, कि ये जो भाव है कि अपने स्वामी को प्रसन्न करना हर स्थिति में, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अपने एक भजन में, आत्मनिवेदन तुया पदे कुरी हाई नु परम सुखी। हे भगवान, मैंने अभी आपके चरणों में आत्मनिवेदन कर दिया, मैं सुखी हो गया। दुख दूरे गेला चिंता न रहिला, चौधरी के आनंद देखी, अब मेरा दुख दूर हो गया, मैं सुखी हो गया। और उस भजन में वे कहते हैं तुम्हारा सेवा लागे, आपकी सेवा के लिए जो दुख है वही मेरा परम सुख है। अगर आपकी सेवा में जितने मुझे कठिनाई भोगनी पड़ती हैं वो मेरे लिए परम आनंद की चीज़ है। वास्तव में हम भक्त हैं कि नहीं, या कितने पानी में हैं, मतलब कितनी गहराई में हैं, ये हम तब जान सकते हैं जब कठिनाई आती है, जब कठिनाई आती है। नहीं तो अगर सब कुछ अच्छा है, टाइम पे दो तीन बार प्रसाद मिल रहा है, सब कंफर्टेबल है, और सेवा इतनी है कि जस्ट कर सकते हैं, और रात में 6 घंटे, दिन में 2-3 घंटे आराम के लिए, तो फिर भक्ति क्या हुई? वो लुक वार्म होगी, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं लुक वार्म। लुक वार्म भी नहीं, गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं, बीच में थोड़ा, इधर भी हॉट और कोल्ड, यूर लुक वार्म सो स्पिट यू आउट। क्योंकि आप या तो भक्त को एकदम भक्ति से गर्म होना चाहिए, नहीं धधकती हुई जैसे अग्नि होती है, ऐसे छोटी सी चिंगारी नहीं, ब्लेजिंग फायर, भक्ति की फायर होनी चाहिए। और वो भक्ति की फायर जो है वो सब पापों को और सब इच्छाओं को नष्ट कर देती। तो तकलीफ, ऑफकोर्स जानबूझ के तकलीफ लेना वो भी ऐसे नहीं कि हम जानबूझ के चाहते हैं, लेकिन अगर सेवा के लिए आवश्यक पड़े तो तकलीफ लेना बहुत खुशी से लेना चाहिए। कल मैं जयानंद प्रभु के बारे में पढ़ रहा था, जो प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर शिष्य थे, जिन्होंने रथ यात्रा की कार्ड्स की शुरुआत की थी, कैसे कष्ट लेते थे प्रभुपाद जी की सेवा के लिए। जब एक बार उन्होंने पूरा रथ तैयार किया था रथ यात्रा के लिए, लंदन में था शायद या न्यूयॉर्क में, और रात को अचानक तूफान आ गया और पूरा रथ कोलैप्स, सब नष्ट हो गया, और सुबह 6 बजे या 8 बजे रथ यात्रा शुरू होनी थी। तो पूरी रात भर जयानंद प्रभु कुछ भक्तों की मदद से पूरी रात मेहनत करते रहे फिर से रथ को तैयार करने के लिए, और सुबह टाइम पर रथ तैयार था। घंटों घंटों सेवा में लगे रहते थे, घंटों घंटों। एक बार तो प्रभुपाद जी आए और सब भक्त उनसे मिलने के लिए गए, जयानंद प्रभु ने भी प्रभुपाद जी को जैसा भक्तों ने दूर से प्रणाम किया, लेकिन फिर अपनी सेवा में लग गए। और बाकी सब भक्त प्रभुपाद जी कमरे में घुस के, जैसे कोई कोई बड़े सन्यासी आते हैं, सब कोई चाहता है कि मैं उनके दर्शन करूँ या नहीं करूँ, उनको मेरे दर्शन करने चाहिए उनको देखना चाहिए कि मैं भी हूँ उनके राइट हैंड, या राइट हैंड का राइट हैंड, कम से कम उनके उनके लिस्ट में हूँ, मेरे को प्रोमिनेंस मिलना चाहिए, मेरे को आगे बुलाना चाहिए। लेकिन जयानंद प्रभु दूर ही सेवा करने लगे, और प्रभुपाद सबकी तरफ देखे, प्रभुपाद ने किसी को बुलाया नहीं। और प्रभुपाद ने पूछा वेर इज जयानंद, प्रभुपाद जी बोला कि वेर इज जयानंद। ये कॉन्शियसनेस है, नॉट टू ट्राई टू सी गॉड, बट ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड वॉन्ट्स टू सी यू। कि भगवान की सेवा करना या गुरु की सेवा कर इस तरह से करना कि भगवान या गुरु बोले कि ये भक्त कहाँ है, वो देखना चाहिए। जय अनंत प्रभु का एक गुण था। प्रभुपा जी, गुरु प्रभुपा जी, जब डिवोटीज ने बोला प्रभुपा बुला रहे हैं तो उसको विश्वास नहीं, बोला मैं इतना तुच्छ जी, मेरे को प्रभुपा बुला रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो भक्त लिटरली जबरदस्ती लेके गए, प्रभुपा जी के सामने जाके अपने सिर झुका के बैठे हुए थे, बस को लग रहा था कि मैं क्या हूँ प्रभुपा जी के सामने। प्रभुपा मुस्कुरा रहे थे, इनका स्पिरिचुअल मास्टर डिसाइपल रिलेशनशिप, गुरु और शिष्य का संबंध होता है वो एक्सटर्नल इंटीमेसी के ऊपर नहीं होता कि कितना आप इनके पास बातचीत कर रहे हैं, वो इस पर आधारित है कि कितना आपकी सेवा भावना है, जितनी कितनी आपकी इंटेंसिटी है डिवोशनल सर्विस। तो नहीं, वे भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए एक बार प्रार्थना करते हैं कि मैं अपना शरीर कुरुक्षेत्र में छोड़ना चाहता हूँ, जहाँ पर श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को वापस वृंदावन ले जा रही है। और उस समय श्रीमती राधा रानी बहुत पीड़ित अवस्था में है, क्योंकि कृष्ण को वृंदावन में नहीं देखकर वो बहुत दुखी हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर मैं राधा रानी की सखी, क्योंकि हम सबका भाव है राधा भाव, हम राधा रानी के दासियों के दासी हैं अपने अपने भगवान के धाम की लीला में, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं राधा रानी की दासी हूँ और उनको वापस ले जाना चाहती हूँ वृंदावन, और वो जो राधा रानी के दुख में उनको मदद करना, यही मेरा परम सुख है, यही मेरा परम सुख है। और सीता महारानी जिनका आज आविर्भाव दिवस है, वो इस तरीके से थे कि भगवान राम के लिए मैं सब सुख त्यागने को तैयार हूँ। दूसरा कोई होता तो साधारण होता, तो साधारण व्यक्ति होता तो बोलता अभी मैंने इतने साल तकलीफ सहन किया रावण के यहाँ रहकर, और वापस आने के बाद मुझे वापस त्याग रहे हैं, ये क्या लॉजिक है, कोर्ट केस फाइल कर देते हैं, कोई लॉ सूट, डाइवर्स सूट, है ना। लेकिन सीता महारानी एक आदर्श पतिव्रता स्त्री का रोल दिखा, जय भगवान राम। भगवान राम अगर वनवास के लिए जा रहे हैं तो वनवास के लिए तैयार हो गए, भगवान राम वनवास में जब उनका हरण हो गया तो भी भगवान राम के चरणों को भूले नहीं, एक क्षण भी नहीं था जब सीता महारानी भगवान राम को भूले हो, और रावण के कितने प्रलोभन, कितने उसके धमकियां, लेकिन सीता महारानी के मन में थोड़ा भी डर नहीं। और ये सब होने के बाद में अग्नि परीक्षा के बाद में भी जब सही सिद्ध हो गए उसके बाद भी भगवान राम ने उनको त्याग दिया, सीता महारानी ने खुशी से स्वीकार किया कि ये भगवान आपकी इच्छा है, दाई विल बी डन, ये आपकी इच्छा। तो हम सब भक्ति चाहते हैं, हम सब भक्ति प्राप्त करने के लिए संस्था में आए हैं, हम भिखारी हैं, भक्ति मांगने के लिए भिक्षा मांगते हैं, और सीता महारानी से आज हम भिक्षा मांगना चाहते हैं कि जैसे उनके भगवान राम के चरणों में अनुरक्ति थी, जैसे उनके भगवान राम के चरणों में वफादारी थी, कि एक क्षण भी भगवान राम के अलावा और किसी का नहीं स्मरण करते, ऐसे हम भी भगवान गौरनिताई राधा कुंज बिहारी के चरणों में आसक्ति पैदा कर सके, कि बड़े से बड़े प्रलोभन माया के, रावण यानी माया का रूप है, जैसे रावण सीता को प्रलोभन देते हैं और धमकी देते हैं, ऐसे माया भी हमें दो चीज़ करती है, प्रलोभन देती है, आ जाओ बहुत अच्छे इंद्र तृप्ति होगा, और अगर नहीं करोगे तो ये ऐसे दुख होगा, तकलीफ होंगे, क्या रखा है ये भक्ति के जीवन में, बाहर देखो आपके कलीग्स जो आपके साथ पढ़ाई करते थे अभी वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, आप यहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी भी देर नहीं हुआ है, माया अंदर से प्रलोभन देती है। लेकिन भक्त को मालूम है कि मेरा एकमात्र संपत्ति है गौरंग और नित्यानंद के चरण कमल, मेरे गुरु और श्री प्रभुपाद की जो आज्ञा है वही मेरे लिए सब कुछ है। भक्ति का मतलब यही है कि विश्वनाथ जी ठाकुर बताते हैं कि एक मन से व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरु नंदन, एक निष्ठ होकर भगवान की सेवा करना, और वो एक निष्ठ क्या है, जो प्रभुपाद जी या उनके प्रतिनिधि की आज्ञा है उसको सिर पे धारण करना, कि इसके लिए सब कुछ अर्पण करना। तो ये थोड़ा सा सीता महारानी के जीवन से हम सीख सकते हैं। मैं थोड़ा सा रामायण से सीता विवाह से शुरू करके थोड़ा सा इंसिडेंट्स पढ़ना चाहता हूँ जो सीता महारानी के जीवन से संबंधित हैं। आप सब जानते हैं भगवान राम के जन्म की कथा, रामनवमी के दिन सुना होगा सबने, रामनवमी के दिन, उसके बाद भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र मुनि की सहायता करने के लिए जाते हैं, ताड़का एंड कंपनी को मार देते हैं, उसके बाद में फिर मरीच को तीर से मारते हैं, उड़ते हुए मॉरिशियस जाते हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट और उसके बाद भगवान राम विश्वामित्र मुनि बोलते हैं अब तुमने मेरा यज्ञ सफल कर दिया, अब चलो हम मिथिला में जाएंगे, और महाराज जनक के राज्य में प्रवेश करते हैं। अभी इस पर्टिकुलर रामायण में डिटेल में नहीं बताया, लेकिन मूल वाल्मीकि रामायण में दिखाया गया कि कैसे महाराज जनक की जो गार्डन होता है उसमें पहली बार भगवान रामचंद्र जी अपनी नित्य शक्ति सीता को देखते हैं और दोनों के बीच में जो स्वाभाविक प्रेम है वो जागृत होता है। जागृत तो हमेशा होता है, मतलब प्रकट होता है। विश्वामित्र मुनि फिर उनको आगे ले जाते हैं और वो बोलते हैं कि जनक महाराज से परिचय कराते हैं और जनक महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, उनसे कहते हैं कि आप यहाँ पर आए तो जरूर कोई उद्देश्य होगा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज जनक जो है वही है जो सीता देवी के नित्य पिता हैं, ऋषि भानु महाराज जो है राधा रानी के पिता। तो महाराज जनक के निवेदन को सुनकर विश्वामित्र मुनि मुस्कुरा कर बोलते हैं कि राम और लक्ष्मण आपके उस शिव धनुष को देखना चाहते हैं और जितने कई सालों से आपने इसकी आराधना की है। तो महाराज जनक बताने लगते हैं धनुष के बारे में। विश्वकर्मा ने दो धनुष बनाए थे, एक भगवान विष्णु को दिया गया था और एक भगवान शिव जी को दिया गया था। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने जो है शिव जी के प्रति अपराध किया था। आप सब कथा को जानते हैं, ये भागवत के तीसरे स्कंद में आता है, शायद तीसरे स्कंद और चौथे स्कंद। और उसके बाद में फिर शिव जी जब उन्होंने देखा कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए तो गुस्से में आके शिव जी ने ये धनुष को लेके पूरे यज्ञशाला को नष्ट कर दिया और सब देवता उनसे फिर प्रणाम करके फिर माफ़ी मांगने लगे। तो प्रसन्न होकर शिव जी ने ये धनुष फिर देवताओं को दे दिया। फिर ये देवताओं ने ये धनुष महाराज नीमी के बड़े पुत्र देवव्रत को दिया और उन्होंने अपने पुत्र को दिया। ऐसे करते करते फिर महाराज जनक के पास आए। फिर महाराज जनक बताने लगे सीता के जन्म की कहानी कि एक बार वो हल जोत रहे थे खेती करने के लिए, जैसे किया जाता है पहले ज़माने में राजा स्वयं भी प्लाव करते थे, जैसे कुरुक्षेत्र नाम पड़ता है, महाराज कुरु वहाँ पर हल चलाते। तो उस समय जब वो हल जोत रहे होते हैं तो अचानक उनको हल के जो नोक से एक बहुत सुंदर स्पर्श करते एक बहुत सुंदर लड़की मिलती है, उसका नाम रखते हैं सीता। सीता जो है वो फरो, व्हाट डू यू से फॉर फरो, फरो है ना, तो ये जब हल से जोतते समय जो नीचे जमीन होता है वहां से सीता प्रकट हुई, इसलिए इसको सीता ये नाम दिया गया। राधा रानी के भी प्रकट होने की लीला कुछ कुछ ऐसी ही है। राधा रानी की दो लीलाएं हैं, एक प्रभुपाद जी वाली बताते हैं और दूसरे है कि जब वो रावल में प्रकट होती हैं, जहाँ पर एक सरोवर के पास में एक कमल का फूल दिखाई पड़ता है। तो महाराज जनक ने उनको अपने अपने घर में लेकर आए, उनको बड़ा किया। और एक बार जब ही सीता महारानी खेल रहे थे और कोई चीज़ लेने के लिए उनको शिव धनुष के पास में जाना था, शिव धनुष को हटाना था। ये शिव धनुष इतना विशाल था कि इसको उठाने के लिए करीब 400 या 500 लोग लगते थे, एक बड़ा विशाल धनुष था। लेकिन सीता महारानी ने बड़े आसानी के साथ उस धनुष को हटा दिया और उनको जो चाहिए था वो उठा लिया। तब महाराज जनक सोचने लगे कि अगर मेरी पुत्री इतनी शक्तिशाली है इसका पति भी योग्य होना चाहिए, इक्वल मैच होना चाहिए। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि जो कोई राजा या राजकुमार इतना शक्तिशाली होगा कि वो इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके तो वो मेरी पुत्री सीता महारानी के साथ विवाह करने के लायक होगा। वो बताने लगे अनेक राजकुमार आए, अनेक राजा आए, लेकिन अधिकांश तो धनुष को उठा ही नहीं सके और कई तो जो उठा सके लेकिन वो प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सके। और इतने गुस्से हो गए राजकुमार, कई राजकुमार मिलकर मिथिला नगरी पर आक्रमण करने लगे क्योंकि उनको बहुत बेइज्जती लगी कि हम धनुष को नहीं उठा सके। और तब महाराज जनक ने देवताओं से प्रार्थना की और देवताओं से प्रार्थना करने पर सारे देवताओं ने आकर उनको मदद की और ये सारे राजकुमार डर के मारे भाग गए। तब महाराज जनक मुस्कुराते हुए कहने लगे कि अगर श्री राम इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं तो बड़े खुशी के साथ इनका विवाह जो है भगवान राम के साथ करा सकते हैं। तो 500 लोग इस बड़े धनुष को लेकर आए जो कि एक रथ, छोटा सा रथ जैसे ही था, 8 पहिए वाला, उसको अंदर लेकर आए और भगवान राम ने उस धनुष को अपने उठाने गए। उस समय महाराज जनक ने चेतावनी दी, हे राम, ये जान लो कि बड़े बड़े राक्षस, यक्ष, गंधर्व और किन्नर और मानव कोई भी इसको नहीं उठा सके या तोड़ सके। वैसे बोलने लगे तब भगवान राम ने बड़े आसानी के साथ उसको अपने बाएं हाथ से बीच में पकड़ा और सबके सामने बड़े आसानी के साथ उसको प्रत्यंचा चढ़ाने गए। और जब वो प्रत्यंचा चढ़ाने गए तो उसको बीच में से दबाया और जैसे एक छोटा बच्चा, छोटा हाथी का बच्चा जैसे गन्ने की डंडी को तोड़ता है, इसे बड़े आसानी से उस विशाल धनुष को उन्होंने तोड़ दिया। उसको तोड़ते ही इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई, वाल्मीकि मुनि रामायण में बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में सब लोग बेहोश हो गए, सिर्फ विश्वामित्र मुनि, जनक और राम और लक्ष्मण को छोड़कर। हरी हरी, भगवान श्री रामचंद्र की। कम से कम आप जय तो जोर से बोली, धनुष तो हम नहीं सुना। भगवान श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। सीताराम की जय। महाराज जनक बड़े प्रसन्नता के साथ बहुत मीठे वचनों में विश्वामित्र मुनि को बोले कि आप अपने संदेश वाहकों को भेजिए और संदेश भेजिए कि महाराज दशरथ को कि इस तरह से मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह भगवान राम के साथ कराना चाहता हूँ। ये स्थान मिथिला नेपाल बिहार बॉर्डर पे है, जो जहाँ पर महाराज जनक का राज्य था। तो जब 3 दिन बाद जब संदेशवाहक महाराज दशरथ के पास पहुँचे और ये समाचार सुनाया तो महाराज दशरथ भी बहुत खुश हो गए। उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ और वामदेव से आपस में चर्चा की और उन्होंने निवेदन किया कि हम भी अगले दिन जाएंगे मिथिला की ओर। वो अपनी पूरी सेना को लेकर, पूरी संपत्ति को लेकर गए। 4 दिन प्रवास में लगे उनको और इसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि एक अच्छा मुहूर्त देखकर अगले दिन विवाह की रीति को किया जाएगा। वशिष्ठ महाराज दशरथ ने निवेदन किया जनक महाराज से कि आप अपने परिवार के बारे में बताइए। महाराज जनक ने निवेदन किया कि महाराज दशरथ से कि मैं कुछ आपके परिवार के बारे में सुनना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ ऋषि बताने लगे कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था मरीचि और मरीचि के पुत्र थे कश्यप। कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान जो कि सूर्यदेव है और विवस्वान के पुत्र है मनु। मनु के पुत्र हैं इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के वंश में एक पुत्र हुए जिनका नाम था भरत। भरत के पुत्र हुए असित और असित लड़ाई में हार गए कुछ आसपास के सैनिक, आसपास के सेना से, तो इसलिए वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए अपने 2 पत्नियों के साथ। और उनकी 2 पत्नी में से एक का नाम था कालिंदी। और जब वो कालिंदी गर्भवती थी उस समय असित की मृत्यु हो गई। तो उनकी दूसरी पत्नी थी उसको बहुत ईर्ष्या होने लगी कि ये मेरी जो सौत है इसको पुत्र होने वाले और पुत्र है पुत्री और मेरे को नहीं होने वाले। तो उन्होंने क्या किया, उसके भोजन में जहर डाल दिया जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो कालिंदी को जब उनको बाद में खाने के बाद पता चला तो बहुत दुख हो रहा था उनको, पता था बालक की भी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने च्यवन ऋषि से निवेदन किया कि आप मदद करो। च्यवन ऋषि के नाम से च्यवन प्रश्न द सेम च्यवन ऋषि ए डिफरेंट सेम। तो च्यवन ऋषि वहाँ पर आए और कालिंदी ने उनसे जब बहुत निवेदन किया तो उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा। मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा कि तुमको पुत्र होगा और जहर भी होगी बाहर निकलेगी, लेकिन पुत्र अलग होगा, जहर अलग होगा, दोनों मिक्स नहीं होगा। इसलिए उनके शरीर से पुत्र भी निकला और जहर भी निकला, इसलिए उसका नाम हो गया सगर। क्योंकि अगर का मतलब यहाँ पर जहर है, स अगर यानी जहर के साथ जो बच्चा प्रकट हुआ। फिर सगर की आप बात आप सुन जानते हैं, उसके दो पत्नियाँ थी, उसके 60,000 पुत्र थे, एक का एक पुत्र था, और पूरी गंगा की कहानी है, आई थिंक सबको मालूम है मेरे ख्याल से। तो उसी वंश में महाराज भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को धरती पे ले आने में सफलता प्राप्त की। फिर उसी वंश में अम्बरीश हुए, नहश, याति, नभाग, अजय, फाइनली अजय हुए, अजय के पुत्र रघु के पुत्र अजय, अजय के पुत्र दशरथ महाराज। इस तरह से पूरे वंश का वर्णन किया गया। फिर महाराज जनक ने निश्चय किया कि मेरी एक और लड़की है, इसका नाम है उर्मिला, वो मैं लक्ष्मण को सौंपना चाहता हूँ। तो इस तरह से राम लक्ष्मण का विवाह सीता और उर्मिला के साथ हुआ। इसमें वशिष्ठ ऋषि ने निवेदन किया, उनको पता था कि महाराज जनक के एक और छोटे भाई थे जिनका नाम था कुशध्वज, और कुशध्वज की दो पुत्री थी, एक का नाम था मांडवी और दूसरे का नाम था श्रुतकीर्ति। तो उन्होंने निवेदन किया कि ये जो दो पुत्रियां हैं वशिष्ठ महाराज, सब वशिष्ठ लाइक मैरिज बोर्ड के मेंबर जैसे वो सब अरेंज कर रहे थे, उन्होंने निवेदन किया कि भरत और शत्रुघ्न का विवाह इनके साथ किया जाए, और जनक महाराज ने स्वीकार किया। तो ये चारों शादी एक साथ हुई, कुछ खर्चा बचाने के लिए नहीं, लेकिन तो जस्ट भगवान के ये नित्य शक्ति। श्रील प्रभुपाद भागवतम के 9th कैंटो में श्रील प्रभुपाद 9वें स्कंध में बताते हैं कि ये जो चार हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इसके एक्सपांशन। भगवान राम वासुदेव हैं और लक्ष्मण संकर्षण, भरत प्रद्युम्न और शत्रुघ्न अनिरुद्ध। महाराज दशरथ ने 1,00,000 गाय दान में दी, एक पर कपल, टोटल 4,00,000 गाय दान में दी। इस तरीके से जो है विवाह बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ, और बहुत डिटेल में बताया गया यहाँ पर कैसे उस सब सेरेमनीज, फूलों की बरसात और जय जयकार। एक बहुत सुंदर पर्पोर्ट यहाँ पर श्री भक्ति विकास महाराज बताते हैं कि सीता का तत्व क्या है। उसमें बताते हैं कि सीता जो भगवान की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं करना चाहता तो सीता देवी या राधा रानी जो भगवान की शक्ति है वही उसके लिए दुर्गा बन जाती है। कि वास्तव में शक्ति एक ही है, एक ही शक्ति है दो रूप में। जैसे कोई बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी को लेके या तो आप गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर के लिए यूज़ कर सकते हैं ठंडक देने के लिए, कूलर के लिए, या वही बिजली से आप सर्दी के मौसम में गर्मी पैदा कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी और दुर्गा देवी, सीता देवी, अल्टीमेटली सब एक ही शक्ति हैं। और एक और चीज़ जो बाद में भी, मेरे पास समय कम है, हम लोग ब्रह्मचारी क्लास में बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे जो सीता महारानी है, जब सीता हरण की भी लीला हुई तो वास्तव में सीता को नहीं स्पर्श किया था रावण ने। एक्चुअली अगर आप नासिक में जाएंगे तो मैं शनिवार रविवार कुछ भक्तों के साथ जा रहा हूँ वहाँ पर, नासिक में आपको नहीं बुला रहा हूँ मैं इसलिए याद है, नासिक में एक अग्निकुंड है, समी यू नो प्रभु योर फादर इज नासिक ना, देर इज अग्निकुंड ना, अग्निकुंड है अद्वैत आचार्य प्रभु डिटेल में बताएंगे उसके बारे में, क्योंकि तो वहीं के रहीवासी हैं इसलिए। लेकिन एक अग्निकुंड है जहाँ पर एक्चुअली सीता महारानी को अग्नि को सौंप दिया गया था, और बाद में जब ही पूरी जब लीला हो गई पूरी, तब बाद में अग्नि से फिर प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी एक ब्राह्मण थे, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए तो ब्राह्मण ने उनको अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाया, और बहुत समय हो गया, दोपहर के 12-1 बज गया, लेकिन प्रसाद तैयार नहीं था। फिर उन्होंने पूछा प्रसाद तैयार क्यों नहीं है, तो कहने लगे क्योंकि लक्ष्मण जो है वो सब्जी लाने के लिए गए हैं और सीता महारानी बनाएंगे। इस तरीके से तो भगवान चैतन्य को पता चला कि ये कितने मग्न थे भगवान की नित्य लीलाओं को स्मरण करने में। ये बहुत एडवांस स्टेज है, हम इसकी नकल नहीं कर सकते, लेकिन शुद्ध नाम जप के द्वारा ये स्टेज आती है, इसमें भगवान की लीलाएं इसको हृदय में प्रकट हो रहे। और तब भगवान राम ने देखा कि एक तो प्रसाद लेट, और उन्होंने कोई प्रसाद खाया ही नहीं जो ब्राह्मण थे। उन्होंने पूछा आप क्यों नहीं खाए, मुझे यही दुख है कि जगत की माता सीता महारानी, उसको रावण ने स्पर्श किया, भगवान की चिन्मय शक्ति को, तो मुझे बहुत दुख है। भगवान चैतन्य आप उन्हें बताया कि ये नहीं हो सकता, जो चिन्मय शक्ति होती है उसको भौतिक इंद्रियों के द्वारा स्पर्श नहीं किया जा सकता। जैसे हम भी भगवान का नाम वास्तव में नहीं ले पाते क्योंकि अभी हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे ग्रायम इंद्रियम, इसकी इंद्रियां अभी ग्रायम ब्लंट मटेरियल सेंसेस, जो इंद्रियां अभी अशुद्ध अवस्था में हैं वो शुद्ध तत्व का स्पर्श नहीं कर सकते। तो रावण कैसे सीता का स्पर्श कर सकते? तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बताया, लेकिन ये ब्राह्मण को दुख गया नहीं। फिर महाप्रभु थोड़े आगे गए और आदिकेश्वर मंदिर में, आदिकेश्वर मंदिर में उनको कूर्म पुराण, देखा कुछ लोग कूर्म पुराण पढ़ रहे हैं, और कूर्म पुराण में प्रसंग आता है कि कैसे वास्तव में जो सीता का जो हरण किया गया था वो असली सीता नहीं थी, ये माया सीता थी। असली सीता का तो पहले से ही रक्षा की गई थी अग्नि के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं, उस ब्राह्मण को मदद करना चाहते, वो तुरंत उन ब्राह्मणों को बोलते हैं कि आप इसका एक कॉपी बना के मुझे दीजिए, हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ, और जो कॉपी होता है उसका बनाया हुआ वो वहीं रखते हैं, और मूल शास्त्र इस ब्राह्मण के पास वापस लेकर आते हैं, ये ब्राह्मण को दिखाते हैं, ब्राह्मण बहुत खुश होता है देख कर। फिर महाप्रभु उसको बहुत खुशी के साथ फिर वो प्रसाद देते हैं टाइम के ऊपर, और वो खुद भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में ऐसे एक और प्रसंग है कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में जाते हैं तो एक ब्राह्मण से मिलते हैं जो हमेशा राम का नाम ले रहा था, अविरत बोलते हुए चलते हुए राम 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 राम। चैतन्य भागवत में लिखा गया कि जो कोई खाईते सुईते उठीते जो खाते हुए सोते हुए हमेशा कृष्ण का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, उसका महिमा का वर्णन वेद भी नहीं कर सकते, उसकी इतना महानता है उस व्यक्ति के। इवन गंगा स्नान और बाकी सब जो वेद विधान वेद पाठ भागवत श्रवण से भी ज़्यादा नाम स्मरण का महत्व है। तो जो अविरत गाता है नॉन स्टॉप, जैसे आप लोग गाते हैं हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, वो सब विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ऊंची विद्या है नाम स्मरण हमेशा। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि नाम ही जप है, नाम ही तपस्या है, नाम ही ज्ञान है, नाम ही ध्यान है, नाम ही पूजा है। तो ये ब्राह्मण हमेशा राम 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 बोल रहा था, चैतन्य महाप्रभु से मिले, चैतन्य महाप्रभु उनको प्रसाद उनको सर्व किया, फिर चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए, अब लौट के आए तो वो कृष्ण बोल रहा था, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा। महाप्रभु ने पूछा, ओ ये ब्राह्मण तुम्हें दशा एक कोना दशा है, व्हाट हैपन टू यू, क्या हो गया आप अभी कृष्ण नाम ले रहे हो? तो बोले कि ये तुम्हारा दर्शन प्रभाव, ये आपके दर्शन का प्रभाव है, कृष्ण नाम स्पुरे राम नाम दूरे गेला, अभी मेरी जीवा पे कृष्ण नाम आ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये दर्शन का प्रभाव है। और फिर वो कहने लगे, मुझे ये लगता है कि आप ही हो भगवान कृष्ण भगवान राम, आप ही हो, क्योंकि मैं पहले बचपन में बहुत सारे पुस्तक पढ़ता था, ब्राह्मण कह रहे मैं बहुत सारे पुस्तक पढ़ता था और इन पुस्तकों में वर्णन किया जाता था भगवान के नाम की महिमा का, रमनते योगिनो अनंत, राम मतलब जिनके अंदर योगी जन भी रमण करते हैं, और मैं श्लोकों को पढ़ता था कैसे सहस्त्र नाम तुल्यभ्यम एक नाम राम, एक राम नाम, एक राम नाम जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है, और फिर एक कृष्ण नाम जो है वो तीन राम नाम के बराबर है। मैं पढ़ता था लेकिन फिर भी मेरे मुख से कृष्ण नाम नहीं निकलता था, लेकिन जब से मैं आपसे मिला तो मेरे मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। तो ये कुछ प्रसंग हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु किला के संबंधित हैं। और एक प्रसंग है जब चैतन्य महाप्रभु हम्पी जाते हैं, हम्पी है ना, हम्पी है जो भगवान जहाँ पर सुग्रीव से मिलते हैं, किष्किंधा क्षेत्र, तो वहाँ पर सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। सुग्रीव पहले तो सोचते हैं कि शायद ये वाली का कोई भेजा हुआ व्यक्ति है, लेकिन हनुमान जी को भेजते हैं परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और भगवान राम से पूछते हैं आप कौन हो, भगवान राम ने परिचय देते हैं, मैं दशरथ का पुत्र हूँ, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। तो हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़ते हैं, कैसे हो गया आप, तो मेरे नित्य स्वामी हो, मैं कैसे पहचान नहीं सका आपको, कैसे हो सकता है। तब भगवान राम ने बताया कि क्योंकि तुम वेश बदल के आए थे इसलिए तुम मेरे को भी नहीं पहचान सके, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान राम उनको गले लगाते हैं, हनुमान जी उनको अपनी पीठ पर सुग्रीव के साथ मिलने के लिए ले जाते हैं, और सुग्रीव और भगवान राम में मित्रता होती है। सुग्रीव बोलते हैं कि मेरी पत्नी का हरण बाली ने कर लिया है, भगवान राम बोलते हैं कि मेरी पत्नी का भी हरण रावण ने कर लिया है। तो दोनों का बहुत कॉमन प्रॉब्लम से मित्रता बढ़ जाती है। भगवान राम बोलते हैं मैं मदद करूंगा तुम्हें, और बाद में तुम मदद करना। एक्चुअली सुग्रीव वो लेकर आते हैं वस्त्र, जो एक्चुअली अभी भी आप जाएंगे हम्पी तो वहाँ पे देखेंगे कपड़े के निशान हैं, जो सीता महारानी ने जब वो हम्पी के ऊपर से जा रहे थे उन्होंने अपने आभूषण एक वस्त्र में डालकर नीचे फेंके थे, और वो जहाँ पर वस्त्र गिरे थे वहाँ पर एक लाइन बनी हुई है अभी भी। और सुग्रीव ने तुरंत लाकर भगवान राम को दिखाया कि शायद ये सीता के होंगे, क्योंकि मैंने देखा कि एक कोई राक्षस जो है एक किसी स्त्री को लेकर जा रहा था। आभूषण दिखाते हैं और लक्ष्मण बोलते हैं देखो लक्ष्मण यही है, ये सीता के आभूषण है। लक्ष्मण बोलते हैं कि हाँ ये जो पैर के आभूषण है वो तो मैं पहचान सकता हूँ, लेकिन ये जो सिर के हैं या नाक के हैं वो मैं नहीं पहचान सकता, मेरे को मालूम नहीं किसके हैं, क्योंकि मैं हमेशा सीता के चरण कमल की ओर देखता हूँ। विश्वास विश्वास जी कितना स्ट्रिक्ट उनका बिहेवियर था लक्ष्मण। फिर सुग्रीव जो है भगवान राम को दोनों के बीच में एक्चुअली एक फायर सेक्रीफाइस जैसे विवाह के समय होता है पति पत्नी का, या भगवान राम और सुग्रीव अग्नि में ये एग्रीमेंट करते हैं, मित्रता का एग्रीमेंट। और उसके बाद भगवान राम बोलते हैं कि मैं तैयार हूँ, तुम वाली को चुनौती दो। लेकिन सुग्रीव के मन में अभी भी शंका होती है, वो सोचते हैं कि देखो पहले ही वाली से बहुत पिटाई हो चुकी है, अगर फिर से मारा तो बहुत खराब होगा। इसलिए बोलते हैं कि देखो वाली के अंदर इतनी शक्ति थी, ये एक बड़ा जानवर था दुंदुभी नाम का राक्षस था, जिसको वाली ने बड़े आसानी से मारा और उसको 100 फीट दूर फेंका। तो अगर आप भी इसको फेंक के दिखाएंगे इसके लाश तो मर गया अभी, उसकी डेड बॉडी को भगवान राम बड़े आसानी से उसको 10 मील दूर फेंक देते एक किक से। बोलते हैं लेकिन अरे अभी भी मेरे मन में शंका है, क्योंकि जब वाली ने मारा था वो जिंदा था उस समय, है ना, आपने मारा उस समय तो अभी ये मरा हुआ है, इसलिए मेरे को अभी भी शंका है। तो भगवान राम ने बोला ठीक है क्या करूँ अभी शंका करने वाले, बोले ये सामने 7 पेड़ हैं और भगवान राम ने इनको एक तीर से बीन दिया था, एक ही तीर, सॉरी आई एम कन्फ्यूज्ड, हाँ बोलते हैं बाली ने इन पेड़ों को, बाली में सॉरी, खाली बोलते हैं कि ये पेड़ों को अगर आप बीन सकते हैं तो मैं मानूंगा कि आप भगवान आपके अंदर शक्ति है। तो भगवान राम एक तीर लेके एक ही तीर से 7ों पेड़ को बीन देते हैं, और वो तीर फिर नीचे जमीन में चला जाता है और फिर वापस भी आ जाता है, तो उसको विश्वास हो जाता है कि उसके बाद में फिर एक्चुअली लड़ाई जब होती है वो वाली को चुनौती देते हैं, और लड़ाई करते करते भगवान राम तो मारने के लिए तैयार होते हैं लेकिन वाली कौन सुग्रीव कौन पता नहीं चलता है, और फिर से सुग्रीव पराजित हो जाते हैं। तो पराजित होने के बाद वह भगवान राम के चरणों में बोलते हैं कि अगर आपको मदद नहीं करनी थी तो पहले बोलना नहीं चाहिए था, देखो आपने निराश कर दिया। तो अन्य भगवान राम बताते हैं कि मैं पहचान नहीं सका, ये कई बार भगवान ऐसी लीला करते हैं, भगवान पहले नहीं जानते थे कि कुछ पहले मार्ग लगाना चाहिए था, ऐसे भगवान खाली टाइम पास करते हैं, इसलिए पास टाइम यानी टाइम पास, ही वॉन्ट्स टू पास हिज टाइम, मन मजा करना चाहते हैं भगवान। और मध्वाचार्य के फॉलोअर्स बताते हैं कि भगवान राम दिखाना चाहते थे कि दीक्षा का क्या महत्व है, तो भगवान राम जो है सुग्रीव को माला पहनाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, सुग्रीव है जो माला वाले सुग्रीव हैं और जो माला के बिना वो वाली है, तो माला पहनाना एक प्रकार से दीक्षा देना, ये दीक्षा होती है तो यानी हम भगवान के द्वारा गुरु के द्वारा एक आइडेंटिटी कार्ड हो जाता है। सुदामा प्रभु बहुत बोलते थे, बोले अगर आप गोलोक में जाएंगे तो अगर आइडेंटिटी कार्ड पूछा तो नमोम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामीनिधि नारायण प्रभुपाद, या परंपरा हमारी पहचान है। टाइम हो गया तो सुग्रीव फाइनली लड़ाई में फिर भगवान राम बड़े आसानी के साथ वाली का वध कर देते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ये 7 वृक्ष उस समय के होते हैं हम्पी में 5, 4.5, 4.5 नहीं कितने त्रेतायुग के समय के, यानी पूरे द्वापर युग के पीरियड। अब चैतन्य महाप्रभु उन 7ों पेड़ को आलिंगन करते हैं और वो सब शरीर जो है वैकुंठ चले जाते हैं का उद्धार कर देते हैं। तो बाकी की लीला हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन मेन चीज़ है कि प्रार्थना करना है सीता महारानी से। और आज जानवा देवी का भी आविर्भाव दिवस है, नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा और वसुधा, ये सूर्यदास सारिखेला की पुत्री थी। जब नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी में आए थे, चैतन्य महाप्रभु एक दिन उनको अकेले में मिलकर कहने लगे कि अगर तुम भी एक साधु की तरह यहाँ पर रहोगे तो बंगाल में लोगों का उद्धार कैसे होगा, मेरी इच्छा है कि तुम गृहस्थ बनो और बंगाल में जाकर प्रचार करो। तो नित्यानंद प्रभु बंगाल में जाते हैं और सूर्यदास सारिखेला के घर में सीधे जाकर सूर्यदास सारिखेला बड़े खुशी के साथ अपनी पत्नी जानो अपनी लड़की जानवा को पत्नी के रूप में देते हैं और बाद में दहेज के रूप में वसुधा को भी देते हैं। ऐसे वो कहानी मालूम होगी शायद में, जानवा जानवा से विवाह के समय जब नित्यानंद प्रभु प्रसाद वस्त्र होता है वो नीचे गिर जाता है, तो क्योंकि वो भगवान की विशेष शक्ति है और वो एक हाथ से प्रसाद दे रहे थे और यहाँ कपड़ा गिर गया तो दूसरे दो एक्स्ट्रा हाथ आ जाते हैं कपड़े को ऊपर रखने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु अपनी नित्य शक्ति को पहचानते हुए, भगवान की शक्ति है रेवती और कांति जो कृष्ण लीला में, तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैं जानवा से विवाह कर रहा हूँ और दहेज में मुझे आपकी दूसरी पुत्री वसुधा दे दो। नित्यानंद प्रभु इस डिमांड कर सकते हैं तो उनका विवाह हो जाता है। सूर्यदास सारिखेला के पास में गौरीदास पंडित का घर है, कुमल में गौरीदास पंडित गौरनिताई, एक बार गौरनिताई नौका पार करके उनसे मिलने के लिए आते हैं और जो जो ओर है जो वल्लव बोलते हैं मराठी में इसको जो जो नौका चलाने के लिए होता है वो चप्पू 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 वो चेतना उनको देते हैं, बोलते हैं तुम्हें रखो इसके द्वारा तुम जन्म मृत्यु के सागर को पार कर सकते हो। अभी भी आप अंबिका कालना में जाएंगे जो जानवा देवी का जन्म स्थान है, सूर्यदास सारिखेला गौरीदास पंडित दोनों भाई उनका भी जन्म स्थान है, तो अभी भी वो रखा हुआ है वहाँ पर, पुजारी आपको दिखाते हैं। यानी कि गौरनिताई से डिटीज बहुत स्पेशल है क्योंकि स्वयं भगवान ने बनाए। जब गौरीदास पंडित गौरनिताई को बोलते हैं कि आप मेरे घर में आप यहीं पर रहो, तो नहीं नहीं हमें जाना है, नहीं आप यहीं पर रहो, भगवान अपने हाथों से मूर्ति बना कर देते हैं, बोलते हैं आप इन मूर्ति की सेवा करो, मेरे और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो भगवान बहुत होशियार होते हैं लेकिन भक्त और भी होशियार। गौरीदास पंडित बोलते हैं कि अगर आप में और मूर्ति में कोई अंतर नहीं है तो मूर्ति को जाने दो, आप रुक जाओ। तो मूर्ति जाने लगते हैं और गौरनिताई जो है हाथ ऊपर करके मूर्ति बन जाते, नहीं 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 आप मत जाओ, आप रुक जाओ, इनको जाने दो। इस तरह से बहुत देर तक लीला चलती, अंत में भगवान ये विग्रह रूप में रहते हैं। और एक बार जब गौरीदास पंडित उनके एक शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है हृदय चैतन्य, वो इतने इतने ज़्यादा एडवांस भक्त होते हैं, एक बार जब गौरीदास पंडित आरती कर रहे होते हैं गौरनिताई के, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो गंगा के किनारे हृदय चैतन्य के यहाँ पर एक उत्सव हो रहा है संकीर्तन, और गौरनिताई ऑल्टर से भाग के वहाँ पहुँच गए हैं। तो गौरीदास पंडित बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो लकड़ी लेके दौड़ते हैं भगवान के पीछे पीछे, अनंत में भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं, उनके शिष्य के हृदय में, इसलिए उनका नाम होता है हृदय चैतन्य। तो जानवा देवी जो है ये बहुत पावरफुल प्रीचर थे, बहुत शक्तिशाली प्रीचिंग थे, इसलिए प्रचार में अगर आपको शक्ति चाहिए तो जानवा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत शक्तिशाली प्रीचर। इनफैक्ट जब चैतन्य महाप्रभु धरती छोड़ के चले गए तो उसके बाद सब नित्यानंद प्रभु चले गए, नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद सब ने जानवा देवी को सबसे श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में स्वीकार किया। भक्ति रत्नाकर में कहानी आती है कि कैसे जानवा देवी जब रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने के लिए आती है राधा कुंड में, राधा कुंड में उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत तपस्या कर रहे थे, सिर्फ तीन दिन में एक बार थोड़े से बटर मिल्क लेते थे, जैसे हम लोग एक दिन में तीन बार लेते हैं वो तीन दिन में एक बार, बहुत बहुत कमज़ोर हो गए थे। भक्त नरहरि चक्रवर्ती बताते हैं भक्ति रत्नाकर में वो बाहर भी नहीं निकल सकते थे, बड़े मुश्किल से बाहर आए, जानवा देवी से बहुत प्रसन्नता से मिले। और जानवा देवी जिन्होंने कि पहला जब गौर पूर्णिमा उत्सव हुआ था उसमें सब भक्तों के लिए प्रसाद बनाया था, सब भक्तों के लिए आयोजन किया था। जनरली हम सोचते हैं सबसे सीनियर वैष्णव यानी सिर्फ फूल माला स्वीकार करना और प्रसाद खाना, लेकिन जानवा देवी जो है वो पर्सनली अपने हाथों से सबके लिए प्रसाद बनाती है, अपने हाथों से बनाती है। और वहाँ पे कुंड है, एक दाल का कुंड, स्वीट राइस का कुंड होते हैं, कोई बकेट्स नहीं, कुंड। और अपने हाथों से जब सर्व करने के बाद में फिर बाद में सब जो सर्व कर रहे होते हैं जो जो बांट रहे होते हैं प्रसाद उनको प्रसाद बांटते हैं और बाद में लास्ट में कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं। एक और कहानी है भक्ति रत्नाकर में कि एक बार जब वो प्रचार कर रहे होते हैं तो कुछ डाकू होते हैं जो जानवा देवी पे आक्रमण करने आते हैं, और डाकू अपने सारे तलवार लेकर दौड़ते हैं उन पर आक्रमण करने के लिए, और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं और दौड़ते हैं, लेकिन वो पहुँच नहीं पाते। एक बार जब वो दुर्गा की आराधना कर रहे होते हैं और प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे हम जानवा देवी पे आक्रमण करेंगे, तो दुर्गा देवी उनके सपने में आकर बोलते हैं कि जानवा देवी है ये मेरी भी, ये इष्ट देवी है, मेरे लिए भी पूजनीय है, ईश्वरी, दूसरा नाम ईश्वरी होता है, आप उनके शरण में जाओ। इसमें सारे डाकू जो है वो जानवा देवी के चरण में आए। जैसे नित्यानंद प्रभु के एक डाकू गैंग को कृपा दिखाते थे, जानवा देवी भी कृपा दिखाते हैं, तो जानवा देवी की कृपा मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल प्रीचर है, शक्ति है भगवान बलराम जी की, नित्यानंद प्रभु। मधु पंडित गोस्वामी पर ज़्यादा मालूम नहीं है मुझे, लेकिन राधा गोपीनाथ डीटीज उनको प्रकट हुए थे ना, मधु पंडित गोस्वामी वो भी बहुत बड़े आचार्य हैं परंपरा। कोई कॉमेंट्स या प्रश्न है किसी को? प्रभुपाद की जय, सीता महारानी की जय, श्री जानवा देवी की जय, श्री मधु पंडित गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय।